خدا حافظ.
خدا امان میں رکھے.
سلام علیکم.
سلام علیکم حاجی صاحب. واہ واہ, زیارت قبول, سفر اچھا گزرا حاجی صاحب؟
بہت اچھا گزرا.
یہ مجھے دیجیے.
کس طرف چلیں؟
آئیے حاجی صاحب, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اکثر طلاب کو تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں بھیج دیا, بعض یہیں پر مدرسے میں رکے ہوئے ہیں. اس بہانے کے جب آپ سفر سے لوٹیں گے تو آپ کے ساتھ خدا حافظی کریں گے. بہرحال جو جو تبلیغ کے لیے گئے حاجی صاحب, ان کو بطور پیشگی ان کا پورا وظیفہ دے دیا گیا تاکہ کوئی مالی مشکل پیش نہ آئے.
الحمدللہ.
اچھا حاجی صاحب, یہ فرمائیے آپ کا سفر کیسا رہا؟ اچھا رہا, نہیں اچھا رہا؟
الحمدللہ.
یقین کریں حاجی صاحب, جب آپ سفر پہ تھے تو میں مسلسل محمد حسین کا خیال رکھتا رہا تاکہ اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. حاجی صاحب, مجھے بہت غصہ اور ترس آ رہا ہے. خدا ہی ان نمک حرام لوگوں کو سمجھے جو بات کو یہاں تک بڑھا چکے ہیں.
اوہ, کیا کہوں.
اب تو آپ یہ نہیں کہیں گے نا کہ صبر کریں, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ہاں, آپ نے کوئی فیصلہ کیا؟
الحمدللہ.
تو میں کہہ رہا تھا حاجی صاحب, اب آپ جب اس گلشن آباد سے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ, نماز وہیں گاؤں میں ہی پڑھائیں گے. انشاءاللہ ایک دن گلشن آباد ضرور واپس آئیں گے. آپ نے اس محراب و مسجد اور گلشن آباد کے لوگوں کی اتنی خدمت کی, لیکن آخر میں آپ ہی کے پیچھے باتیں کرنے لگے. میں آپ سے لگائی بجھائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن انہوں نے باتیں کی ہیں, میں نے خود سنی ہیں.
جس طرح کی باتیں آپ کہہ رہے ہیں, اس طرح لگائی بجھائی تک بھی نوبت پہنچ جائے گی.
حاجی صاحب, میں چاہتا ہوں آپ اس مسجد میں واپس نہ جائیں. ان لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے. میں آپ پر فدا ہو جاؤں, مسجد میں لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک حصہ آپ کا طرفدار ہے اور ایک آپ کا مخالف ہے. اور کچھ لوگوں نے تو مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک مدرسے اور پانی وغیرہ کے غصبی ہونے کا معاملہ صاف نہ ہو جائے ہم مسجد میں نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نماز خراب ہو. کچھ بھی کہوں, الحمدللہ کہتے ہیں.
الحمدللہ.
ابھی بس الحمدللہ ہی کہتے ہیں. اگر بدبختی اور پریشانی الحمدللہ سے حل ہوتی ہے تو بتائیں ہم بھی اس کا ورد کریں گے.
رشتہ یہ برگردنم افکند دوست, می کشد ہر جاؤ کی خاطر خواہ اوست. یہ لیجیے.
یہ کیا ہے حاجی صاحب؟
آپ کے لیے لایا ہوں.
زحمت فرمائی حاجی صاحب آپ نے, بہت شکریہ.
ایک کوہنا کار استاد نے بنائی ہے.
کتنی خوبصورت ہے
نجمہ صاحبہ. میں نے ارادہ کیا ہے کہ کل صبح ہی انشاءاللہ گاؤں چلا جاؤں. آپ خود مختار ہیں, اگر یہاں رکنا چاہتی ہیں تو یہیں رہیں, میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے.
میں کبھی بھی آپ سے غافل نہیں ہوئی حاجی عبدالحسین. میں نے کب آپ کو تنہا چھوڑا ہے؟
لیکن اس دفعہ معاملہ مختلف ہے.
کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ وہی حاجی عبدالحسین ہیں اور میں وہی نجمہ ہوں.
نجمہ بیگم, آپ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے آ کر میری بیوی بنی, ایک طالب علم کے ساتھ سادہ زندگی گزاری, ایک گھر اور چند بھیڑوں کی مالک تھیں, وہ بھی میں نے آپ کی اجازت سے محمد حسین پر خرچ کر دی. لیکن آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی پہلے تھا, جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں, سب کو پیچھے چھوڑ دوں, خلوت اختیار کروں. شاید دوبارہ ایسا دن آئے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں خلق خدا کی خدمت کے لائق ہوں. लेकिन आज आपको इख्तियार है, मुख्तार हैं आप कि मेरे साथ ही आखिरी कदम उठाएं या फिर ना उठाएं। लेकिन मैं गवाही देता हूं कि जो कुछ भी आपका फर्ज था आपने बखूबी निभाया है उसे। मैं पूरी जिंदगी आपका मकरूज रहूंगा।
यानी मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई हूँ हाजी अब्दुल हुसैन? मानती हूँ कि मैं आपकी तरह इस रास्ते पे कदम नहीं उठा सकती, लेकिन आखिरकार लंगड़ाते हुए यहाँ तक आपके साथ कदम ब कदम चलती आई हूँ। बाकी भी खुदा मालिक है। अब्दुल हुसैन, मैं बेवफा हमसफर नहीं हूँ।
हाजी साहब, सब तलबा तशरीफ ला चुके हैं, हम आपकी खिदमत में हैं। आइए आइए।
सलामुन अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुदा को शाहिद व नाजिर जानकर ये कह रहा हूँ कि जो काम मैंने किए हैं उसमें खुद अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखा है। मुझे यकीन था और है कि हाजी हबीब ने तमाम गौर व तवज्जो के साथ इस मदरसे और ज़मीन को वक्फ़ किया है और इस सिलसिले में कोई शरई मुश्किल नहीं पाई जाती। लेकिन उनके वारिसों के पास एक सनद और कागज़ मौजूद है और उन्होंने मदरसे और ज़मीनों का दावा कर दिया है, लिहाजा मैंने फ़ैसला किया है कि अदालत के फ़ैसले से पहले मैं मदरसे और उससे मुतालिका तमाम बागात को अंसारी साहिबा के हवाले कर दूँ।
हाजी साहब, माफ़ कीजिएगा, ये कदम जो आप उठा रहे हैं ये बहुत ही
अहमद अली साहब, मेहरबानी करके मुझे अपनी बात पूरी करने दें।
फरमाइए फरमाइए।
मैंने फ़ैसला किया है कि मदरसे और बागात अंसारी साहिबा के हवाले करूं और ख़ुद अपने घराने के साथ गांव चला जाऊं, और अगर उम्र ने वफा की तो किसी और फुर्सत में आपकी खिदमत में रहूंगा। अज़ीज़ तलबा, अपने दरसो बहस की फ़िक्र ना करें, जनाब महदवी साहब का वजूद हमारे दरमियान एक नेमत है। फ़िलहाल उनकी खिदमत से फैज़याब होते रहें। आपकी तालीम को जारी रखने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूँगा, लेकिन आप लोगों से मेरी वाहिद ख्वाहिश ये है कि मेरे फ़ैसले के बारे में मुझसे वजाहत ना मांगें, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं बता सकता। मोहतरम तुल्लाब से ये अर्ज़ है कि कल से मदरसे को खाली कर दें और अहमद अली साहब भी चाबियां ले जाकर अंसारी साहिबा के हवाले कर दें। खुदा आप सबका हामी व नासिर हो।
सलाम अबूजान।
अलैकुम सलाम बेटा।
ये काम क्यों किया अबू जान? मदरसे को क्यों बंद कर दिया?
ये तो जरूर होना था बेटा।
बिल्कुल, क्योंकि खुदा ने आपको मेरे जैसा नाफरमान बेटा दिया है।
ऐसा मत कहो, तुम्हारी इस बात से मेरा वजूद लरज जाता है।
मेरा वजूद लरजना चाहिए अब्बू जान।
खुदा जिन लोगों से प्यार करता है कभी उनको ज्यादा मुसीबत में डालता है बेटा।
क्या प्यार है खुदा का, मैं इस हाल में और घर वाले उस हाल में, वो बेघर हो जाएं इसलिए कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसको खुशी देता है, न यह कि उसको मुसीबत में डाले।
अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, कभी कभी खुदा अपने बंदों पर बलाएं नासिल करता है ताकि उनके ईमान के अंदाज को आजमाए कि वो कितना कुरान पर ईमान रखते हैं, और जो बातें करते हैं या जो दावे करते हैं उन पर उन्हें कितना ईमान है और इस बात पर कि एक खुदा है, खुदा है जो आलम गैब से उनका ख्याल रख रहा है।
लेकिन यह मुसीबत जो मैंने खड़ी की है उसकी आग ने सबका दामन जलाया, हत्ता आपका, जिन्होंने इतनी अरसे मदरसे के लिए जहमतें उठाई।
मेरे बेटे, इन मसाइल से गुजरना बाइस बनता है कि मैं अपनी जिंदगी की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं कि मैंने जिंदगी में कहां कहां गलत कदम उठाया। मौत से पहले पहले अगर मैं अपनी खताओं की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं तो ये बड़े शुक्र की बात है।
अबू जान, क्या मैं आपसे एक इल्तिजा कर सकता हूं? क्या मुमकिन है कि आप मदरसा खाली ना कराएं?
इस दुनिया में कोई भी चीज दिल जोड़ने के काबिल नहीं। दुनिया से दिल जोड़ोगे तो असल किस्से से गाफिल हो जाओगे। मदरसा असल में इमाम जमाना अलैहिस्सलाम का है, अगर उन्होंने मसलहत समझी तो खुल जाएगा।
उनकी तबीयत कैसी थी?
ज्यादा ठीक नहीं थी, बेचारा कर भी क्या सकता है। बेटी मुझे जरा हाजी हबीब के घर तक पहुंचाना।
जी अच्छा। आप एक मिनट मेरी बात सुने, अगर आप उस लाइन को जिसमें ये खबर छपी है एक दफा फिर गौर से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक ठीक ही तो है ना, जब ये लिखा है तो इसका मतलब है खबर मौसक नहीं है। ये वो चीज है जो हमने दूसरे नामा निगारों से सुनी है। मैं नहीं जानती, आपका जो दिल में आए कीजिए, जो करना चाहे वो करें। ठीक है जनाब, ठीक है। बदतमीज कहीं का, सारा मूड खराब करके रख दिया। मेरे शहर के एक स्पोर्ट्समैन के बारे में सिर्फ दो लाइन की खबर छापी है कि उसने शादी कर ली है। अब वो नाराज हैं कि आपने झूठी खबर क्यों छापी है।
जब शादी की नहीं है तो खबर क्यों छापते हो?
अरे मेरी सहेली ने ये खुफिया खबर दी थी, मैंने ये खबर उसी से सुनी थी, और उसने ये खबर इस स्पोर्ट्समैन के पड़ोस में वाकई ब्यूटी पार्लर में सुनी थी।
खुफिया खबर का मतलब वही महल्ले की औरतों की बातें है ना।
जब कोई खबर ही ना हो तो हम क्या करें। एक दफा हमने कोशिश की कि एक कामयाब औरत और उसकी बेटी का इंटरव्यू लेकर छपवाएं, लेकिन उसका नतीजा शोर और लड़ाई की सूरत में निकला।
उसकी भी वजाहत हो जाएगी।
अगर तुम ये काम करोगी तो मैं वाकई तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी।
लेकिन इस वक्त मुझे तुमसे एक काम है।
हाँ बोलो।
एक मिनट अपना काम रोक सकती हो?
ओह माफ करना, मुझे ये काम परसों वापस करना है।
किसी को जानती हो जो एक एड्रेस या टेलीफोन का पता लगा सके?
मैं ना तो एक्सचेंज में काम करती हूँ और ना ही पुलिस थाने में।
जानती हूँ, लेकिन इन हालात में किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती।
ये किसका नंबर है?
एक ऐसे आदमी का जो नहीं चाहता कि मैं जानूं कौन है और कहां का है।
कोशिश करूंगी लेकिन वादा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे अफराद आमतौर पर ऐसी जगहों से फोन करते हैं जिनका सुराग लगाना मुश्किल होता है। चाय तो पी लो।
बहुत शुक्रिया, तो मैं तुम्हारी खबर की मुंतजर रहूंगी।
मोहतरमा अंसारी, क्या ये नंबर आपके दामाद के केस से मुतालिक है?
अगर तुम ये काम कर दो तो मैं वादा करती हूँ कि एक मुद्दत तक तुम्हारे मैगजीन को मैटर मिलता रहेगा। अगर पता चल जाए कि किसने शहीदी साहब के बेटे के लिए जाल बिछाया है तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हकीकत भी रोशन हो जाएगी। इस तरह तुम इन झूठी खबरों की बजाय सच्ची खबरें छपवा सकोगी।
सलाम।
अलैकुम सलाम। सलाम।
अलैकुम अस्सलाम।
अंदर आइए ना।
आप चलें।
चलिए आप।
जी चलिए।
तुम्हारी जिंदगी उस वक्त मुतलातिन थी, तुम नहीं जानती थी कि करना क्या है। तुम्हारे पास मुस्तकबिल का कोई प्रोग्राम नहीं था। अगर मायदा को अपने साथ ले जाती तो मालूम नहीं कि उस पराए मुल्क में उस बच्ची की जिंदगी का क्या बनता। तुम्हारी माँ भी तो यहाँ अकेली थी, तुम्हारी जगह किसी को उनके साथ रहना चाहिए था। इन सब के अलावा बच्चे की सरपरस्ती का हक बाप का होता है। तुमने भी निकाह के वक्त बच्चे की सरपरस्ती लेने की शर्त नहीं लगाई थी। ये दुरुस्त है कि जलील मरहूम, खुदा उनकी मख्तरत करे, तुम्हारे लिए अच्छे शौहर नहीं थे, लेकिन वो एक अच्छे बाप जरूर थे। मायदा को ले जाने से तुम पर शरई फरीजा भी आयद होता और कानूनी जिम्मेदारी भी। ये वो असबाब थे जिनकी वजह से मैंने मायदा को तुम्हारे साथ नहीं जाने दिया। अगर मैंने सही काम किया है तो ठीक, अगर गलत काम किया है तो यहीं पर खुदा से इस्तग़फ़ार करता हूँ।
लीजिए।
मायदा बेटी, ये तुम्हारी माँ हैं। माँ को अपनी बेटी की ज़िंदगी पर हक होता है। इंशाल्लाह जैसे इस मुद्दत में तुम दोनों के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। हुदा बेटी, ये पैसे गुलशनाबाद के बागात के मुनाफे के बाकी पैसे हैं। अब जबकि इन बागात का इख्तियार तुम्हारे हाथ में आ गया है, ये पैसा भी कायदतन तुम्हारा है। इसका पूरा हिसाब इन्हीं कागजात में लिखा हुआ है।
मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ ज़मीनें चाहिए थी, वो भी मायदा और मोहम्मद हुसैन के लिए।
मेरी बेटी, ये कि तुम इन ज़मीनों का क्या करना चाहती हो इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बहरहाल उसके बाद इन पैसों का इख्तियार अब तुम्हारे हाथ में है। बाबा की जान बेटी।
जी।
चलें बेटी।
चलिए।
अब इजाज़त दो। तुम्हारे वालिद मरहूम चाहते थे कि तुम्हारा नाम ज़ैनब रखें। तुम शबे कद्र में पैदा हुई थी, मैंने तजवीज़ रखी कि तुम्हारा नाम हुदा रखा जाए। हुदन लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। हाजी हबीब मान भी गए और तुम्हारा नाम हुदा रखा। मैंने हमेशा तुमसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है और हमेशा तुम्हारी खैर व सलाह चाही है। अगर कोई ऐसी बात या ऐसा काम किया हो जो तुम्हारी दिल शिकनी का सबब बना हो तो मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैं तुम्हारा एहसान मंद भी हूँ। ज़मीनें लेने के तुम्हारे इसरार की वजह से मेरी आँखों को ऐसी चीज़ें देखने की तौफीक मिली कि वही चीज़ें मेरी आकबत के संवरने का सबब बने। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटी, खुदा तुम्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। तुम भी अपनी माँ की मदद करो। देखें बागात के मुस्तकबिल के लिए उसका प्रोग्राम क्या है, जो कर सकती हो उसके लिए करो।
ठीक है अब्बू जान।
कुछ हो गया है बेटी, परेशान हो?
नहीं, मोहम्मद हुसैन की फिक्र है।
इंशाल्लाह सब ठीक होगा।
इंशाल्लाह।
बेटी अस्पताल के सामने जरा रुकना, मुझे उतरना है।
क्यों, कुछ हुआ है क्या?
नहीं बेटी, मेरे कदीमी दोस्त जनाब तकवाई साहब की कीमियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स ने दोबारा परेशान कर दिया है, उन्हें देखने जा रहा हूँ।
ठीक है।
बहुत शुक्रिया बेटी, बस यहीं रुक दो।
कोई बात नहीं, अब वो मैं यहीं रुकती हूँ, आपके साथ ही चलूँगी।
नहीं बेटी, तुम जाओ, मुझे ज्यादा देर तक रुकना है।
वाकई में?
हाँ बेटी हाँ।
अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
हेलो, सलाम हाजरा, तुम ठीक हो?
सलाम आयदा, मैं ठीक हूँ।
कहाँ हो?
घर में हूँ। क्यों?
ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं अभी लेने आती हूँ।
क्यों, कुछ हुआ है क्या?
नहीं, तैयार हो जाओ, बताती हूँ।
ठीक है, मैं तैयार होती हूँ।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
बरात अली, तुम हर चीज को आधा अधूरा क्यों बयान करते हो?
मायदा सच कह रही है, जो जानते हो वो बता दो।
मैं जो जानता था वही था जो बता दिया।
लेकिन मैं फिर भी नहीं समझी कि कौन बाइस बना कि मोहम्मद हुसैन बेखुसर होकर भी जेल चला जाए।
यही नाम जो मैंने बताए, उन्हीं लोगों को इस बात का पता था।
यानी तुम और मोहम्मद हुसैन, मजीद, आरश और मिर्जाई साहब जानते थे?
हाँ।
अच्छा, अगर मजीद को पता था तो उसने जाके भाई को बता दिया और भाई ने भी उसे सारा किस्सा सुना दिया।
अगर मुरादी ने भी रिश्वत दी हो तो वो जानता था रसीद मोहम्मद हुसैन के नाम है।
कर्नल जहांगीर भी सब कुछ जानते हैं, है ना?
हाँ, उनको भी इल्म था, उन्होंने खुद ही मजीद से बात की। मोहम्मद हुसैन और आरश ने भी उससे बात की लेकिन कुछ नहीं मिला। आरश तो उसे लड़ने जा रहा था लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला।
यानी तुम लोगों के जी में जो आया किया और किसी को कुछ नहीं बताया?
मोहतरमा, मैं तो सिर्फ उनके साथ साथ था।
यही कि तुम जानते थे फिर भी नहीं बताया, ये बड़ी बात है। क्या करना चाहिए?
मैं जानती हूँ कि किस तरीके से मजीद से बात उगलवानी है। माफ करना जहमत दी। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मायदा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही?
मैं परेशान क्यों ना हूँ, आखिर मुझे समझना ही होगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं।
तुम जाओ, मैं रुकती हूँ।
सलाम दाऊद साहब। जी ठीक हूँ। मजीद यहाँ भी नहीं है क्या? आपके पास है? माफ कीजिएगा दाऊद साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपको कालीनों के मसले के बारे में पता था? पता था कि नहीं? पूछो। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करूंगी। बस खुदा के वास्ते जल्दी आइएगा।
जल्दी करो तुम लोग, ये किताब है।
आराम से।
ख्याल रहे पांव के नीचे ना आए।
आराम से, आराम से।
सलाम।
सलाम। आप यहाँ पर मदद के लिए क्यों आए हैं?
मायदा,
जरा एक मिनट रुकना।
मैंने सोचा शायद मदद की।
बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, आप जाइए।
बेटे तुम जाओ, हम ठीक कर।
मैंने कहा ना मदद की जरूरत नहीं है, जाइए।
खामोश रहो।
तुम्हें अब्बू जान से आंखें मिलाते हुए शर्म नहीं आती?
लेकिन मैंने किया क्या है?
क्या नहीं किया है? हमारे जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हारे भाई की फ्रॉड की वजह से बेचारा मोहम्मद हुसैन जेल में पड़ा है।
मायदा, अंदर आओ। चलो
अंदर चलो।
तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, हम लोग कर लेंगे।
आओ। मजीद को उसके भाई की सजा क्यों दे रही हो? अम्मी जान, आप इन लोगों को नहीं जानती, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब इन्हीं का क्या धरा है।
मत चिल्लाओ बेटा।
माफ करना, ये गाड़ी मिर्जाई साहब ने मेरे लिए खरीदी है और इसका पैसा भी मेरी तनख्वाह से कटेगा।
लोगों के गुनाहों को मत धो बेटा।
किसने पुलिस को बताया था कि वो पैसा जो रिश्वत के तौर पर अकाउंट में डाला गया था मोहम्मद हुसैन के नाम था? या इसने कहा या इसके भाई ने? बोलो, अब बोलते क्यों बंद हो गई?
मुझे मालूम है कि मोहम्मद हुसैन बेगुनाह है। यकीन करो कि अगर मैं कुछ कर सकता कि वो जेल न जाए तो मैं जरूर करता।
तुम्हें मोहम्मद हुसैन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरी तरफ से अपने भाई को इतना कह दो कि जो पैसा उसने खाया है वो उसकी दवाइयों पर लगेगा। ऐसा पैसा जो हाजी शहीदी की बेइज्जती और बर्बादी की कीमत पर मिले वो सिर्फ बदबख्ती और तबाही का बायस होगा।
मायदा बहन, अभी तुम बहुत गुस्से में हो।
जी, मैं अभी गुस्से में हूँ।
माफ करना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने दो चार आने की तनख्वाह का खुम्स भी हाजी शहीदी साहब को देता हूँ, मैं क्यों उनकी बेइज्जती पर राजी होऊंगा?
जाओ भाई जाओ, यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं।
मायदा, अंदर चलो।
मायदा चलो, शहीदी साहब ने देख लिया तो नाराज हो जाएंगे।
मजीद बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कर देना बेटा, ये लड़की इस वक्त बहुत गुस्से में है, अगर कुछ बुरा लगा हो तो दिल पे मत लेना। अब जाओ, अपनी माँ को मेरा सलाम कह देना।
खुदा आपको सलामत रखे।
चलो,
माफ कीजिए।
सलाम।
सलाम। कुछ काम था जो फोन किया था?
मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अंदर चलिए।
नहीं, बस एक मिनट, तो मैं देखने आया था, मुझे काम है।
दाऊद साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि किस किस को पता था कि मोहम्मद हुसैन ने उस आदमी के अकाउंट में पैसा डाला है?
मुझे नहीं मालूम।
लेकिन मैं जानती हूँ, जिन अफराद को पता था उसमें सिर्फ मजीद ही पुलिस को बता सकता है कि मोहम्मद हुसैन ने रिश्वत दी है।
नहीं, मजीद अपने भाई से बिल्कुल अलग है, मैं मजीद पर अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा रखता हूँ।
आरश और बरात अली तो ये काम नहीं करेंगे ना, तो सिर्फ बचते हैं मजीद और आप।
क्या कह रही हो, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैंने तुम्हारे शौहर के बारे में खबर दी है?
मेरा मतलब ये नहीं था।
हाजी शहीदी साहब कहते हैं कि इंसान को गुस्से की हालत में बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में भुगतना मुश्किल हो जाता है। तुम जो उनकी बहू हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए।
कंट्रोल में नहीं हूँ, परेशान हूँ।
सब्र का नमूना तुम्हारे सामने है और मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, हाजी शहीदी साहब की बात कर रहा हूँ। देखो कितने सुकून से हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जैसे सब कुछ जानते हो कि ये दुनिया एक खेल है।
जी हाँ, हाजी साहब बहुत साबिर हैं, लेकिन आपके थ्योरी और नजरिए के मुताबिक नहीं है।
अल्फाज के चक्कर में मत पड़ो मायदा बेटी, मुझे यकीन है कि मोहम्मद हुसैन भी आज़ाद हो जाएगा और लिया हुआ कर्जा भी चुकता हो जाएगा और हम दोबारा फिर से शुरू करेंगे।
इस दफा उनको बड़ा काम शुरू नहीं करने दूंगी।
बड़े काम के लिए बड़े मुशीरों की जरूरत होती है, इस दफा मैं खुद उनका साथ दूंगा और एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे कि ये कर्ज खा अपना पैसा वापस लेने से पशेमान हो जाएंगे। मायदा बेटी, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है और तुम हमेशा मेरे लिए बेटी की तरह रही हो, तुम फिक्र मत करो, यह किस्सा खैरियत के साथ खत्म हो जाएगा।
माफ कीजिएगा जो सख्त लहजे में बात की।
खुदा हाफिज।
मैं कहती हूँ इस तरह से वर्क पलटना चाहिए।
हाँ ना, इसी तरह से वर्क पलटते हैं, देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। अच्छा तो अब सुनो, ये क्या कह रहा है?
जी
बहुत अच्छे, तो सुनो आगे क्या आ रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
बिस्मिल्लाह, सुन रही हो ना? सुन रही हो? शाबाश।
या अल्लाह,
या अल्लाह, तशरीफ लाइए।
वाह, सलाम अलैकुम हाजी महदवी साहब।
वाह वाह, आइए आइए अकबर साहब। ज़हरा जान,
या अल्लाह, आप बैठे रहिए, आप मेहरबानी करिए बैठे रहिए।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आइए अकबर साहब।
भला हो आपका,
कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बच्ची कितनी प्यारी है।
नवाजिश है आपकी।
भला हो आपका। मैं कह रहा था ये बरात अली है कहाँ?
बरात अली इस वक्त तरबियती मरकज में।
ये तरबियती मरकज कहाँ है?
दरवाजे से निकलकर सहन के कोने में उसका बोर्ड लगा हुआ है।
बहुत शुक्रिया,
बैठिए ना, कुछ लीजिए।
शुक्रिया, खुदा आपका हाफिज हो।
खुदा हाफिज।
मैं कह रहा था हाजी साहब, कोशिश करें कि आपको एक बेटा भी हो जाए, बेटा बुढ़ापे की लाठी हुआ करता है।
जी ठीक है,
अगर मेरा कोई बेटा होता तो इस बरात अली से उम्मीद ना लगाए रखता। ला इलाहा इल्लल्लाह।
सलाम अकबर साहब।
अलैकुम सलाम। लड़के, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मस्जिद में काम करते हो? अभी तक तुम कहाँ थे? मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था, यहाँ 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
अकबर साहब, मैं 10 मिनट के लिए बाहर गया था खाना लेने के लिए, कोई काम था मुझसे क्या?
काम तो बताता हूँ, लेकिन पहले ही तुम टॉफी तो खाओ।
टॉफी किस लिए?
ये कम ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है।
लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक है।
कोई बात नहीं, इंसान हमेशा एक हालत में नहीं रहता, कभी ब्लड प्रेशर कम भी हो जाता है, बेहतर है। अल्लाह।
अकबर साहब, अजान हो रही है, अगर आप इजाजत दें तो पहले नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं।
ठीक है ठीक है। कहते हैं कि नमाज से ना कहो कि मुझे काम है, बल्कि काम से कहो कि नमाज का वक्त है।
चलिए
चलो चलो। या अल्लाह,
प्यारी गुड़िया, तुम यहीं बैठकर एक ड्राइंग बनाओ, जब तक मैं नमाज पढ़कर वापस आता हूँ।
क्या बनाऊं?
कोई भी एक प्यारी सी चीज बनाओ।
नमाज बनाओ?
नमाज भी ठीक है, नमाज बना लो।
आपकी ड्राइंग बनाओ।
मेरी ड्राइंग बनाओगी? मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हिलना नहीं, ताकि मैं आराम से नमाज पढ़ सकूँ।
जी।
शाबाश। या अल्लाह।
बा आवाज़े बुलंद सलावात।
अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अशहदु अन्न मुहम्मदन।
الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر
मैं पकड़ूंगी
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
क्या हुआ ऐसे? हाजी साहब, मैं भी चलूं आपके साथ?
तुम जाके नमाज पढ़ाओ।
या खुदा।
हाजी साहब चलिए, मैं छोड़ दूं।
आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं।
बरात अली, इधर आओ। हाजी महदेवी साहब ने कहा है कि आप आगे जाइए, ये लोग भी आपके आगे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो इन लोगों को इंतजार मत करवाओ भाई, किसी और को कह दो कि जाके नमाज पढ़ाए।
जी
जाओ भी।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन
السلطان 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 السلط
حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة.
کوئی خاص بات نہیں ہے، خدا کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا۔
ڈاکٹر صاحب، اچانک دیکھا کہ بچی بے حال ہو رہی ہے، میرا دل بھی ڈوب گیا۔ دیکھا کہ آرام سے آنکھیں موند لیں، جتنی بھی آوازیں دیں لیکن جواب نہیں دیا۔
وہ خون زیادہ بہ گیا ہے، بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا ہے، اس لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔
خدا کا شکر ہے، پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی گہری محبت ہے، اس لیے زیادہ دنوں تک یہ بیمار نہیں رہ سکتی۔
ڈاکٹر صاحب، ہماری پوری زندگی بس یہی بچی ہے۔
حاجی صاحب، ہم ہمیشہ ٹی وی دیکھا کرتے ہیں، ٹی وی میں ہم آپ کو اتنا دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ ہمارے گھر کے فرد ہیں۔
آپ کی عنایت ہے ڈاکٹر صاحب۔
کاش یہ محبت جو آپ کو آپ کی بیٹی سے ہے، یہ ہمارے بچوں میں بھی ہوتی۔
ڈاکٹر صاحب، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟
جب میں اسپیشلائزیشن کر رہا تھا تو اپنے بچوں سے بہت دور ہو گیا تھا، 24 گھنٹے پڑھائی کیا کرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اسپیشلائزیشن کے بعد میں ان کے لیے تابناک مستقبل بنا سکوں۔
یعنی ابھی آپ راضی نہیں ہیں؟
ناراض نہیں ہوں، لیکن راضی بھی نہیں ہوں۔
معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کے بچوں کا کوئی مسئلہ ہے؟
نہیں، خدا کا شکر ہے، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی پڑھائی میں مشغول ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اسپیشلائزیشن کریں گے اور اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں گے۔ معاف کیجیے گا حاجی صاحب، آپ تو خود ایک استاد ہیں،
آپ کی عنایت ہے،
لیکن اس محبت کی قدر کریں۔
ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ کے لیے آئیں گے؟
آتا ہوں آتا ہوں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما۔
خدا قبول کرے حاجی صاحب، قبول ہو، انشاءاللہ قبول ہو، قبول ہو۔
یا اللہ،
نماز قبول ہو اکبر صاحب؟
قبول حق ہو۔ یہ نماز پڑھانے کا کون سا طریقہ ہے تمہارا؟
غلط پڑھی؟ کچھ ہوا ہے کیا؟
جماعت اتنی طولانی پڑھائی جاتی ہے کیا؟ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ چار بیمار اور چار میرے جیسے بوڑھے معذور تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟
معاف کیجیے گا،
اس طرح اگر عالم بننا چاہو گے تو تمہارے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔
میں نے اس پہلو پر تو بالکل نہیں سوچا تھا، آئندہ خیال رکھوں گا۔
اس کے بعد خیال رکھنا۔
جی اچھا۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ لو ٹوفی کھاؤ۔
بہت بہت شکریہ، کھا چکا ہوں، مرکز کے اندر کھائی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔
کوئی حرج نہیں ہے، اور لے لو، کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی ہے۔ اتفاق سے ایسے موقعوں پر لوگوں کی شوگر نیچے آ جایا کرتی ہے۔
کیسے موقعوں پر؟
تمہاری ابھی کی حالت کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔
میری حالت کو کیا ہوا اکبر صاحب؟
کیا تمہیں تاریخ یاد ہے؟
تاریخ؟ تاریخ کس لیے؟
ہاں تاریخ، تمہاری اور میری بیٹی حاجرہ کی محرمیت کے ختم ہونے کی تاریخ۔
آج ہی ہے نا؟
جی ہاں، آج وہ تاریخ ختم ہو رہی ہے۔
کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ آج کے بعد میری نظر سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آج کے بعد تمہیں میرے دروازے پہ آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج کے بعد حاجرہ کے لیے جس کا بھی رشتہ آئے گا، میرے گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے۔ ایک بات جو میں اب تک سمجھا ہوں وہ یہ کہ تم اقتصادی لحاظ سے تم گھر چلانے کے قابل نہیں ہو میرے بھائی، تم شک و تردید میں مبتلا ہو، تم نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کھا لو تاکہ شوگر ابھر جائے۔ یا اللہ یا اللہ۔
میری زہرہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟
میں ٹھیک ہوں اب
الحمدللہ، خدا کا شکر۔ میری پیاری بچی،
کتنا ٹائم لگا دیا؟
اپنا ذاتی سامان اکٹھا کرنے کی اجازت تو دیں۔
اجازت ہے، جو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے، مجھے اپنا حق چاہیے تھا جو مل گیا۔
ماشاءاللہ، شاباش، اچھا کیا۔ انصاری صاحبہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، یہ یہاں کی چابیاں ہیں، یہ بڑی والی صدر دروازے کی ہے، اور چونکہ آپ یہاں کے دروازے کو بند کرنا چاہتی ہیں تو باقی آپ کے کام کی نہیں ہے۔
یہاں کے سامان کا کیا بنے گا؟
جو کچھ نظر آ رہا ہے سب وقفی ہے، سب مدرسے کا ہے۔
ان کا کیا کروں میں؟
مجھے کیا پتا، آپ جانے، اور مدرسہ اور وقفی اموال اور آپ کی آخرت اور عاقبت خود جانیے۔ خدا حافظ۔ اور ہاں انصاری صاحبہ، جانے سے پہلے ایک دعا کرنے دیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو کام آپ نے کیا، انشاءاللہ اسی دنیا میں آپ کو سکون ملے، قبر کی پہلی رات فشار قبر نہ ملے، اور منکر و نکیر کے سوالات کا فر فر جواب دے سکیں آپ۔ انشاءاللہ اس دنیا میں اونچا مقام حاصل ہو، اور بہشت میں اور بھی اونچا مقام حاصل ہو۔ خدا حافظ۔
مجھے تانا دے رہے ہیں کیا؟
میں تانا نہیں دے رہا، میری دعا ہمیشہ الٹی قبول ہوتی ہے۔ دعا کرتا تھا کہ برات علی ایک اچھا عالم بنے، اچھا تو کیا، معمولی بھی نہ بن سکا۔ خدا تمہارا حافظ ہو۔ خدا حافظ۔
اینجا